अरमान जब रशीद के सिर पर कुर्सी मार चुका था तो उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। कुर्सी लगते ही रशीद का सिर फट गया और देखते ही देखते उसके सर से खून बहने लगा था। रशीद दर्द से कराह उठा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान नूर का हाथ पकड़कर वहां से निकल चुका था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन शोर इतना ज्यादा हो गया था कि आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। हालात बिगड़ते देख लोग रशीद को संभालने लगे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया। खून लगातार बह रहा था और माहौल अफरातफरी से भर चुका था। इधर फैजान की हालत बिल्कुल अलग थी, वो बेहद स्ट्रेस में था। नूर अभी तक घर वापस नहीं आई थी और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ था। उसे इतनी तो उम्मीद थी कि अगर नूर ने रेहान को बताया होगा तो रेहान उसे बचा लेगा, क्योंकि आखिर रेहाना ने खुद नूर की जिम्मेदारी ली थी। यही सोचकर फैजान खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, मगर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वो टेंशन में इधर उधर टहल रहा था, कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखता, कभी मोबाइल उठाकर फिर रख देता। जुबेदा बेगम ने ऊपर से यह सब देखा। उन्होंने फैजान को यूं बेसब्री से घूमते देखा तो माहिरा के पास बैठते हुए बोली, इसे क्या हुआ है, इधर उधर ऐसे क्यों घूम रहा है? उसी वक्त एक सूटकेस में सामान भरकर काम वाली मुलाजिमा वहां से गुजरती है। जुबेदा बेगम की नजर सूटकेस पर पड़ती है। ये क्या है, तुम कहीं जा रही हो? उन्होंने माहिरा से पूछा, क्योंकि वो सूटकेस माहिरा का था। माहिरा ने बिना भाव बदले कहा, मेरा पुराना सामान है, सोच रही हूं कि नूर को दे दूं। अच्छा किया, जुबेदा बेगम ने तंज भरे लहजे में कहा, किसी गरीब के काम आ जाएगा। तुम अपने नए कपड़े और जूते एक दो बार पहनती हो और फिर फेंक देती हो। मुलाजिमा सूटकेस उठाकर वहां से चली जाती है। माहिरा ने बात साफ करते हुए कहा, पहले भी गरीब लोग ही पहनते थे, अब भी पहनेंगे। पहले भी ये सामान गरीबों के ही काम आता था। उसका मतलब साफ था कि घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना पुराना सामान उन्हें ही दे देती थी। जुबेदा बेगम ने नाक से कोड़ते हुए कहा, वो तो ठीक है, मगर पुराने ही सही, कपड़े ब्रांडेड हैं। कपड़े जूते इन काम वाले लोगों को क्या पता कि ये कितने महंगे हैं। तुम्हारी ताई है ना, वो तो सस्ते बाजार से इन्हें 500 में कपड़े ला कर देती है। माहिरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने भी तो ताई से ही सीखा है। उसका मतलब साफ था, अगर वो नूर को पुराने कपड़े भेज रही है तो यही सब उसे पहले भी समझाया गया था। उसी वक्त ऊपर से फैजान आ जाता है, जुबेदा बेगम कहती हैं, और वैसे भी अगर दिल बड़ा कर ही लिया है तो अपने शौहर का भी थोड़ा ध्यान रखो। ताई के कहने पर गरीबों पर तरस करना, दया करना सीख रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने मुंह पर कीचड़ मलूं। माहिरा के लिए फैजान वही कीचड़ था। जुबेदा बेगम की नज़र अंदर आए हुए फैजान पर पड़ती है। वो फौरन नकली मुस्कान ओढ़ लेती हैं। आओ बेटा आओ, वो मीठी आवाज़ में कहती हैं। मगर माहिरा ने फैजान को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि फैजान ने ये सब सुन लिया था। क्या आज रात के फंक्शन की सारी तैयारियां हो गई हैं? जुबेदा बेगम ने पूछा। हो गई हैं, फैजान ने संयम से जवाब दिया। आप चाहें तो देख सकती हैं। फिर उसने एक नज़र माहिरा पर डाली। माहिरा दूसरी तरफ देख रही थी और फैजान की तरफ देखना भी उसे गवारा नहीं था। फैजान ने एक पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला गया। देखकर बोला करो, जुबेदा बेगम ने माहिरा से कहा। उसने सब सुन लिया। तो सुन लिया, माहिरा ने बेरुखी से कहा। अच्छी बात है, हर किसी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम इसकी बेइज्जती करके क्या मजा पाती हो? जुबेदा बेगम गुस्से में बोली और वहां से बाहर चली गई। माहिरा मन ही मन मुस्कुरा उठी। मजा तो आएगा शाम को, वो सोचने लगी। जब नूर बाहर होगी सभी पूछेंगे नूर कहाँ है, और रेहान को पता चलेगा कि नूर क्यों गई थी। फिर रेहान सादिया पर गुस्सा होगा। क्या बात है माहिरा, तुमने क्या चाल चली है? वो खुद पर बेहद खुश हो रही थी। माहिरा के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल हमेशा पलता रहा था कि अगर रेहान और सादिया का तलाक हो जाए और वो भी फैजान से तलाक लेकर रेहान से निकाह कर ले तो उसकी जिंदगी पूरी हो जाए। रेहान माहिरा का बचपन का क्रश था, वो आज भी रेहान से शादी करना चाहती थी। उसके दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर रेहान ये सोच ले कि उसे सादिया को तलाक देना है और माहिरा से निकाह करना है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मगर अनजाने में ही वो ऐसे हालात पैदा कर रही थी कि रेहान उसका तो नहीं, किसी और का दीवाना जरूर होने वाला था, और वो दीवानगी जुनून की उस हद तक होगी जिसके लिए वो अपनी बर्बादी तक को तैयार हो जाएगा। नूर को उनके रिश्तेदारों के घर से वापस लाते लाते शाम हो चुकी थी। आसमान में सूरज ढलने लगा था, मगर नूर के लिए तो जैसे जिंदगी ही अंधेरे में चली गई थी। गाड़ी के अंदर बैठी नूर लगातार रो रही थी, उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि राशिद उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भरोसे के साथ वो वहां गई थी वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। उसके अब्बा ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। अरमान गाड़ी चलाते हुए बार बार उसे आईने से देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। तुम्हें वहां जाने की सलाह माहिरा ने दी थी, अरमान ने आखिरकार नूर से पूछा। अरमान को यह सब फैजान से पता चला था, फैजान ने रेहान को बताया था, और रेहान ने अरमान को पूरी बात समझाई थी कि नूर किस तरह वहां गई थी और किन हालात में फंसी थी। नूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, उन्होंने तो बस मेरी हेल्प की थी मेरी वहां जाने में, आना तो मैं खुद चाहती थी। नूर के दिल में माहिरा के लिए कोई गुस्सा नहीं था। वो ये समझ ही नहीं पाई थी कि माहिरा ने क्या चाल चली थी। उसे तो यही लग रहा था कि सब कुछ हालात का खेल है, मगर अरमान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन तुम्हें वहां आने की जरूरत ही क्या थी, अरमान ने सख्त लहजे में कहा। वहां कुछ भी हो सकता था नूर, अरमान की आवाज में चिंता के साथ साथ गुस्सा भी साफ झलक रहा था। देखो, उसने थोड़ा गाड़ी की स्पीड कम करते हुए कहा, तुम्हें पता है आज कितनी परेशानी हुई है। कहीं भी जाने से पहले रेहान भाई को या मुझे बताकर जाना, ऐसे बिना बताए मुंह उठाकर मत चली आया करो, नूर ने धीरे से कहा। लेकिन माहिरा ने कहा था कि वो अम्मी को मेरे जाने के बारे में बता देगी, अरमान ने बिना कुछ कहे अपना फोन नूर की तरफ बढ़ा दिया। लो, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। नूर ने चुपचाप फोन लिया और अपना नंबर सेव कर दिया। तुम्हारी खबर देना माहिरा का काम नहीं है, अरमान ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। इतना कहकर अरमान ने अचानक एक शोरूम के सामने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी, नूर ने हैरानी से पूछा। अरमान ने नूर के कपड़ों की तरफ देखा। ऐसे कपड़ों में, उसने कहा, जब तक हम पहुंचेंगे घर में पार्टी शुरू हो चुकी होगी, तुम ऐसे जाओगी तो फैमिली भी परेशान हो जाएगी। असल में नूर के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक का ग्लास गिर गया था, वही ग्लास जो राशिद उसे जबरदस्ती पिलाना चाहता था। उसके कपड़े जगह जगह से खराब हो चुके थे, इसलिए अरमान ने बात पूरी की, तुम पार्टी के हिसाब से कपड़े पहन लो, नूर ने धीमी आवाज में कहा। मगर ये तो बहुत महंगे होंगे, वो वहां से कपड़े नहीं खरीदना चाहती थी, इसी वजह से वो गाड़ी से उतर ही नहीं रही थी। अरमान का सब्र जवाब देने लगा। ये सब सोचने का टाइम वहां जाने से पहले था, उसने कहा, अगर तुम ऐसे कपड़ों में घर के अंदर जाओगी तो सबके सामने हमारे घर की इज्जत का क्या होगा। उसकी आवाज में सख्ती थी मगर चिंता भी। प्लीज चलो, नूर चाहकर भी मना नहीं कर पाई, वो चुपचाप अरमान के साथ गाड़ी से उतर गई।
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं।